आदर्श प्रस्तुत किया है कि भगवान के लिए पूर्ण समर्पण का क्यों आवश्यकता है और उनकी मार्गदर्शन में उनकी जो छह शिष्य हैं, प्रमुख छह शिष्य षड गोस्वामी उनको कहते हैं, षड गोस्वामी, वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपालको, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये षड गोस्वामी कहा जाता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं और ये छह वैरागियों में श्रेष्ठ वैराग्य का उन्होंने प्रदर्शन किया। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के अनगिनत गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ भक्त थे। तो ये जो छह गोस्वामी, यही छह गोसाई जार मुई तारा दास, जाने में मोरा यही अभिलाष, ऐसा कहा नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये छह गोस्वामी का मुई तारा दास, हम ये छह गोस्वामी के कौन है, दास है। और उसी प्रकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब वो गुरु का व्याख्या करते हैं कि जो छह गोस्वामी है ये मेरे शिक्षा गुरु हैं, इस प्रकार का वर्णन करते हैं। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हमारे जो छह गोस्वामी हैं उनका जीवन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें बहुत प्रेरणा मिलता है। उन्होंने कैसे भक्ति किया और कैसे अपने गुरु का आदेश का पालन किया। जैसे स्वर्ग गोस्वामी के पहला ही श्लोक में बताया गया है, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परा, नहीं, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन करो प्रेमामृता बुनिधि, मैं वो चैतन्य चरितामृत का दूसरा श्लोक याद आ जा रहा है। तो ये जो छह गोस्वामी है भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन और कीर्तन में हमेशा सतत लगे हुए थे। तो उनका जो दिन रात भगवान के भजन में जाता था, अलग अलग शास्त्र का वो लोग अध्ययन करते थे और उस शास्त्र से क्या निचोड़ है वो निकालते थे और समाज को भक्ति का ज्ञान प्रस्तुत करते थे और अलग अलग मंदिर बांधना। इस प्रकार छह गोस्वामी जो हैं उन्होंने एक आध्यात्मिक क्रांति इस समाज में लाया और उसका फल अभी हमको मिल रहा है। उस समय तो केवल वो छह लोग, सात लोग, दस लोग बैठे थे, कुछ लिख रहे होंगे, परंतु उनका जो समाज के प्रति अवदान है वो भी हमें पता चल रहा है। तो हम अगर इन गोस्वामियों की जीवन चरित्र को देखेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगा कि हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, आज इनका आविर्भाव दिन है, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का पिताजी का नाम था वेंकट भट्ट और ये आध्यात्मिक जगत में गुण मंजरी, भगवान के जो पार्षद, नित्य पार्षद हैं गुण मंजरी, और श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन ऐसा कहा गया है। उनका गांव का नाम था बेलगुड़ी, कावेरी के तट पे ये गांव है और ये श्रीरंगम के बहुत पास है। यहाँ पे इनका गोपाल का जन्म हुआ था। गोपाल जब तक छोटे हैं हम उनको गोपाल कहेंगे। तो तीन भाई थे, तिरुमला भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट। बाद में प्रबुद्ध भट्ट प्रबोधानंद सरस्वती नाम से एक बहुत महान आचार्य हो गए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वेंकट भट्ट के पुत्र हैं। तो वेंकट भट्ट कौन थे? ये तीनों भाई श्रीरंगम में जो मंदिर है, आप लोगों ने, सब लोगों ने गए रहेंगे, कितने लोग आप लोग गए हैं श्रीरंगम? काफी लोग गए हैं। श्रीरंगम का जो मंदिर है वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। उसमें सात गेट है, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, जैसे हमारा गेट है इधर एक गेट है, उधर एक गेट है। आपको पहला गेट देख के लगेगा ये मंदिर ही रहेगा, लगेगा ऐसा, गोपुरम ही इतना बड़ा बड़ा रहता है। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और मंदिरों के अंदर अभी शहर जैसा बन गया है, गेट के अंदर 7 लेयर है वहां पे। तो वहां पे भगवान रंगनाथ का निवास स्थली है और श्रील रामानुजाचार्य वहां पे पूजा करते थे। तो श्रीरंगम का ये व्यक्तिगत पुजारी लोग थे, मतलब हम लोग सोच सकते हैं वो लोग कितनी। वो लोग कितने भक्ति में उनका जीवन रहेगा और भगवान में उनका कितना लगाव रहेगा, क्योंकि वो लोग रंगनाथ भगवान के व्यक्तिगत पुजारी थे। तो वही व्यक्तिगत पुजारी वेंकट भट्ट के गोपाल भट्ट जो है उनके संतान थे। तो इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो 6 गोस्वामी हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि उनकी जो अतीत है, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, इतने संस्कार उनको मिला था। तो 1500 साल में करीबन, कुछ लोग 1503 बताते हैं, कुछ लोग 1500 बताते हैं, साल 1500 में गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म हुआ था। और 1510 महीने में श्री चैतन्य महाप्रभु ने, आज के दिन उन्होंने सन्यास ग्रहण किया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास केवल इसी कारण से ग्रहण किया था कि वो पूरा दुनिया को जो है भक्ति का दान कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक वैरागी का जीवन जीते हैं ताकि जितने जीव हैं उनको वो भक्ति का प्रदान कर सकें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जब आयु केवल 24 वर्ष का था, उन्होंने संन्यास लिया आज का दिन, मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति एक बहुत पवित्र दिन है भारत में, क्योंकि आज सूरज इस तरफ जाना चालू करेंगे, उत्तरायण पहाड़ में आपने देखा रहेगा, अभी वो ऐसे चालू करेंगे। उत्तरायण जब होता है, ये बहुत, इस दिन बहुत शुभ कार्य किया जाता है और बहुत शुभ माना जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज का दिन उन्होंने इसको संन्यास लेने के लिए चुना। संन्यास लेने के बाद पुरी गए और 2 साल दक्षिण भारत का परिभ्रमण किया और अलग अलग धाम उन्होंने दर्शन किया, उसमें से विशाखापट्टनम, सिंहाचलम, अहोबिलम, तिरुपति, कांचीपुरम, श्रीरंगम, ऐसे चैतन्य महाप्रभु जाते थे। 2 साल में बहुत यात्रा कर लिए बिना ट्रेन के चलते चलते, मतलब सोचिए आप, एक जगह से दूसरा जगह जाना है तो चलते चलते वो जाते थे बिना साधन के, सब धाम में जाते थे। चैतन्य महाप्रभु जहाँ जाते थे वो नृत्य करते थे। तो उसी प्रकार वो श्रीरंगम शहर में पहुँचे। श्रीरंगम भगवान का वहाँ पे पूजा होता है, तो वहाँ पे भक्तों का संख्या बहुत था उस समय, अभी भी रहेगा। तो जब भक्त बहुत थे, सब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देख के बहुत आकृष्ट हो गए और बहुत खुश हो गए कि हमारे प्रांत में एक इतना महान भागवत आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है सिंह, वहां पे कहा गया है, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है चैतन्य महाप्रभु को सिंह जैसा कहा गया है। तो उनका सिंह जैसा क्यों तुलना किया गया है, इसका 5 कारण है। सिंह का जैसे रंग रहता है शरीर का, सुनहरे रंग, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का रंग भी सुनहरे था। दूसरा, सिंह का जैसा घुंघराले बाल रहते हैं चैतन्य महाप्रभु का, उसी प्रकार बहुत सुंदर घुंघराले बाल रहता था। और उनका छाती बहुत चौड़ा था। उनका जो आविर्भाव हुए थे, सिंह राशि में भगवान चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुए थे। और उसी प्रकार जब सिंह चिल्लाता है तो कोई गुफा के अंदर कोई अगर हाथी छुपा है तो वो डर से बाहर आ जाता है। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का जो चित्कार है, हुंकार है, उनका जो हुंकार है वो हमारे हृदय के अंदर जो काम रूपी हाथी बैठा हुआ है उसको भगाने में मदद आता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे हुंकार करते हैं? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज कहते हैं कि अगर हमको बहुत काम वासना सताते हैं तो बहुत जोर जोर से भगवान का नाम लेना है। लेकिन वो बोलते हैं कि बिना मुंह खोले भी बहुत जोर से नाम ले सकते हैं। मतलब इसका अर्थ है गंभीरता से, हे भगवान, हे नित्यानंद, मेरा रक्षा करिए, उसी प्रकार पुकारना है। तो इसको ओंकार बोलते हैं। अद्वैत आचार्य ओंकार करते थे, ओंकार गर्जनाति, ओंकार करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि चिल्लाते थे, परंतु आतुरता के साथ, गंभीरता के साथ भगवान को बुला रहे थे। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो मत्त सिंह प्राय प्रभु, मत्त सिंह, तो चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, अकेले भी रहते तो नृत्य करते थे। हमको कभी कभी मृदंग करताल चाहिए रहता है, बीट्स आता है तो हमको डांस करने का इच्छा आता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम में इतना डूबे हुए थे कि मृदंग रहे या ना रहे, वो भगवान प्रेम से स्फुरित होके वो नृत्य करना प्रारंभ कर देते थे, किधर भी जाते थे। तो जब इनका नृत्य को देखा, इनका हरिनाम संकीर्तन को देखा, तो वेंकट भट्ट जो रंगनाथ स्वामी के पुजारी थे, उन्होंने सोचा निश्चित रूप से ये मेरे परम आराध्य भगवान स्वयं ही आए हैं, क्योंकि इस प्रकार का भाव और इस प्रकार का भक्ति और इस प्रकार का सुंदर शरीर ये किसका हो सकता है, ये निश्चित रूप से भगवान रहेंगे। और वेंकट भट्ट ने, क्योंकि वेंकट भट्ट भी बहुत शुद्ध हृदय के थे, हम समझ सकते हैं 500 साल पहले वो भी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर और एक एक अद्वितीय परंपरा का मंदिर, उसका मुख्य पुजारी, मतलब भगवान उनके साथ निश्चित रूप से आदान प्रदान करते होंगे। ऐसे शुद्ध चरित्र, शुद्ध हृदय और भगवान के शुद्ध भक्त वेंकट भट्ट ने जब अपने आराध्य को देखा, वो समझ गए ये मेरे साक्षात भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जो कृष्ण है, ये रंगनाथ हैं। तो उन्होंने उनको आदर सत्कार किया और उन्होंने अपने घर में उनको बुलाया भोजन के लिए, उनका पैर धोया, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पाद पद्म को धोया, प्रक्षालन किया और उस जल को लेके अपने परिवार के सारे सदस्यों के ऊपर सिंचन किया, जैसे सुबह हम वो मारा जाता है अपने ऊपर, ऊपर से पानी आता है, भगवान को धोया हुआ चरण का जो जल है उसको फेंका। तो उससे क्या हो गया, जो गोपाल था उस समय छोटा बालक था, करीबन 8 साल 9 साल का, जब गोपाल के ऊपर भगवान का पाद पद्म का धुला हुआ जल सिंचन हुआ, उस समय गोपाल भगवान के प्रेम में डूब गए और उनके आंखों में आंसू बहने लगे और वो भगवान के प्रेम में डूब गए। वो इतना छोटा सा बालक, परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु का पाद पद्म का जल से वो प्रभावित हो गए। और पर उस दिन से गोपाल जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों में खोया हुआ है, मतलब चिंतन करता था, चिंतन करते थे भगवान के बारे में। और गोपाल भर जो गोपाल जो है उनके माता पिता पता था कि ये जो गोपाल है ये बहुत बहुत बड़ा भक्त है। उनको कैसे पता था, एक बार वो लोग जगन्नाथपुरी गए थे, तो जब 4 साल के थे गोपाल भट्ट गोस्वामी गोपाल, तो गोपाल ने देखा जगन्नाथपुरी का चक्र को, और जैसे ही जगन्नाथपुरी का चक्र को देखा वो भगवान के प्रेम में वो चिल्लाने लगा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, और वो भूमि पे गिर पड़ा। तो उनको माता पिता को पता था कि जो हमारा जो ये जो पुत्र है गोपाल, ये बहुत विशेष भगवान के पार्षद है, भक्त है। तो वेंकट भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निवेदन किया कि आप ये जो हमारा जगह है आप यहीं पे रहिए 4 महीना, अभी चातुर्मास्य का समय है, क्योंकि पहले यातायात के लिए चातुर्मास कुछ सुविधा नहीं था, इस प्रकार का पक्के रोड नहीं थे, तो लोगों को सन्यासियों को साधुओं को बाबाजियों को अगर एक दूसरे स्थान से जाना है तो जिस समय बारिश हो रहा है उस समय जाना एक जगह से दूसरे जगह ना बहुत कठिन होता था, तो इसीलिए वो एक जगह पे बैठ के भजन करते थे 4 महीना। तो वेंकट भट्ट ने कहा कि आप इसी जगह पे रहिए, ये तो बहुत धाम है, कावेरी के तट पे है, भगवान रंगनाथ स्वयं है, चातुर्मास्य का समय है, और आप यहीं हरिकथा करिए और हम आपका हरिकथा सुनेंगे, हम आपका सेवा करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का समय जो है 48 वर्ष में, वो दक्षिण भारत का 2 साल में 4 महीना एक जगह पे रुके, तो उन्होंने बहुत जो है ये बहुत विचारणीय बात है कि 4 महीना उन्होंने श्रीरंगम एक ही जगह पे उन्होंने बिताया और उन्होंने अपना संग दिया। तो वेंकट भट्ट ने क्या किया, अपने पुत्र गोपाल को चैतन्य महाप्रभु को सेवा में लगा दिया। 24 घंटा गोपाल श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा में लग गए, उनका पैर जो है तो पैर दबाना, उनका खाना का प्रबंध करना, और उस प्रकार जितनी भी सेवाएं हैं बड़ी नम्रता से गोपाल जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के करते थे। उस समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के था जो उनके थे दास, उनका नाम था गोविंद। तो गोपाल को गोविंद सुनाते थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे वो क्या लीला करते थे, क्योंकि गोपाल भी अभी छोटा था, तो वो लोग बताते थे कि जब निमाई था उस समय छोटा बालक, उस समय गंगा के तट पे जाता था और गंगा के तट के अंदर पानी के नीचे जाके किसी का धोती खींच लेता था कभी कभी कुछ लोग तपस्या कर रहे हैं तो उनका पीठ के ऊपर चढ़ जाता था और उनको बोलता था मैं शिवा हूँ। अलग अलग आपने सुना रहेगा, चैतन्य महाप्रभु ने इतनी जो है इतना नटखट बालक थे और बहुत खेलते थे, और बाद में जो इंक रहता था स्याही रहता था वो सारे शरीर में लगा देते थे, ऐसा लगेगा कि स्कूल से जाके आए हैं, लेकिन सब नटखट करते थे। तो इस प्रकार के सारे लीला सुनाते थे। बाद में निमाई पंडित कैसे सुंदर दिखते थे वो सब बताया। तो गोपाल भट्ट गोपाल को लगा कि मुझे मेरा जन्म और जो टाइम है, जो स्थान और समय है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, मुझे नवद्वीप में जन्म होना चाहिए था और मुझे निमाई पंडित का जो सुंदर रूप है उसका दर्शन करना चाहिए था, मेरा बहुत इच्छा है कि मैं उसी रूप का दर्शन करूं, निमाई पंडित का रूप को। तो ब्रह्मा जी को गोपाल भट्ट गाली देने लगे, बोले मेरा जन्म थोड़ा कुछ समय पहले अगर किए रहते आप 15 साल पहले और रंग बेलगुड़ी में ना होके नवद्वीप में जन्म होता तो मैं वही सब लीला देख सकता था, परंतु बाद में उन्होंने सोचा ठीक है मेरा ही कर्मा रहेगा कि मैं अभी ऐसे जन्म हुआ। तो इस प्रकार गोपाल का बहुत इच्छा था चैतन्य महाप्रभु का सन्यास रूप ना देख के नदिया में जो सुंदर घुंघराले बाल थे ऐसा रूप का मेरा दर्शन होना चाहिए था। तो एक बार गोपाल स्वप्न देखा, उस स्वप्न में क्या देखा, चैतन्य महाप्रभु का उस नवद्वीप वाले जो रूप है गौरहरि निमाई पंडित, उस रूप को देखा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदर रूप है, नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य है और सब लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार का रूप देख के स्वप्न में ही गोपाल बहुत प्रसन्न हुआ। उस समय नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य बुलाते हैं गोपाल को और कुछ कहना चाहते हैं, और कुछ कहना चाहते थे, और जैसे ही कुछ कहना चाहते थे गोपाल का स्वप्न टूट गया। तो जब कभी कभी अपना स्वप्न टूट जाता है, हम याद करने का प्रयास कर रहे थे, बहुत अच्छा सपना था आज, कौन सा सपना था, वापस सो के देखता हूँ लेकिन वापस सोने से सपना याद ही नहीं आता, चला जाता है तो गोपाल ने क्या किया, दौड़ दौड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए। और जैसे ही दौड़ दौड़ के गए, उस समय चैतन्य महाप्रभु के को नहीं देख के उन्होंने क्या देखा, श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तित होके उनको दर्शन दिए। तो गोपाल ने देखा भगवान श्री कृष्ण का सुंदर रूप, श्याम सुंदर भगवान को, और कुछ समय के बाद वही श्याम सुंदर निमाई पंडित में परिवर्तित हो गए। तो गोपाल ने देखा निमाई पंडित और बहुत बड़े प्रसन्न हो गए, अरे मेरा जो बहुत वर्षों से इच्छा था कि मुझे निमाई जो गौर हरि का दर्शन होना चाहिए सुंदर रूप का, आज मुझे दर्शन हो गया। तो दर्शन किया, उस समय बाद में क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु के रूप में वापस परिवर्तित हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपाल ये चीज किसी को बताना मत ये रहस्य दर्शन हुआ तुम्हें। उन्होंने कहा कि तुम बाद में वृंदावन जाना और तुम्हारा बहुत शिष्य होंगे, उनको शिष्य का ग्रहण करना, लेकिन उससे पहले तुम्हारे जो माता पिता हैं वो परम वैष्णव हैं, उनका तुम उनका जीवन का अंत तक उनका सेवा करो, और उसके पश्चात तुम वृंदावन आ जाओ। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार का आदेश दिया, जैसे रघुनाथ भट्ट को भी उन्होंने आदेश दिया था, अपनी माता पिता का सेवा करके तुम वापस आ जाना। तो गोपाल घर में रहा और धीरे धीरे गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है प्रबोधानंद सरस्वती जो उनकी चाचा हैं, उनसे सारे ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया भक्ति के। और प्रबोधानंद सरस्वती भी बहुत बड़े आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब बड़े हो गए, उस समय उनका जो माता पिता थे उनका अंतिम समय आ गया। तो उनके माता पिता ने कहा कि आज उन्होंने कहा कि हमारा केवल एक ही इच्छा है कि हमारा देह त्याग के पश्चात तुम वृंदावन चले जाओ और अपना संपूर्ण जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु को न्यौछावर कर दो, क्योंकि जब से वेंकट भट्ट ये तीनों भाई ने श्री चैतन्य महाप्रभु को मिले थे, वो लोग केवल चैतन्य महाप्रभु को ही स्मरण करते थे, चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए थे। तो उसी प्रकार उनके माता पिता जब उनको देह त्याग कर रहे थे, वो लोग चैतन्य महाप्रभु को स्मरण कर रहे थे और गौरांग का नाम लेते लेते वो लोग वैकुंठवासी हो गए। उसके पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आते हैं, पूरी नहीं आते। उस समय चैतन्य महाप्रभु पुरी में होते हैं, लेकिन उन्होंने उस आदेश को स्मरण किया कि मुझे वृंदावन जाने के लिए आदेश मिला है, तो वो वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पुरी में क्या चल रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु और गदाधर गोस्वामी श्रीमद् भागवत का चर्चा कर रहे थे। हमें अगर पता है, स्मरण रहेगा, श्री चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित जब श्रीमद् भागवत का चर्चा करते थे, उनकी नेत्रों से जो आंसू बहता था उससे श्रीमद् भागवत गीला हो जाता था। और उस समय श्रीमद् भागवत का बहुत सारे कॉपी नहीं थे, जैसे बहुत सारे सेट हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अनलिमिटेड सेट से, उस समय एक किसी के पास एक है और उसमें से ही आंखों से आंसू चला गया और भीग गया तो दिखता भी नहीं था। परंतु प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज की कथाओं को वो लोग 20-20 बार 25-25 बार एक साथ सुनते थे और दोनों रोते थे, क्योंकि गदाधर पंडित भी राधा रानी है और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव से हैं। तो श्रीमद् भागवत का हमारा तो उस प्रकार का पढ़ाई नहीं होता ऐसे आंखों में आंसू नहीं आते क्योंकि अभी तक कुछ प्रेम जागृत नहीं होता है, नहीं हुआ है। परंतु वो लोग कौन से हिसाब से पढ़ते थे, मतलब क्या अनुभव करते थे, वो अकल्पनीय है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। उतनी उन्नत धरण के जो भक्त हैं, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे तोटा गोपीनाथ में बैठे बैठे कि बहुत दिन हो गया रूप और सनातन का कुछ खबर ही नहीं आया, और क्या गोपाल श्रीरंगम से वृंदावन आ गया, उनका ऐसा इच्छा था, प्रश्न था। उसी समय जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा किया, एक दूत आया और दूत ने कहा रूप और सनातन से ये खबर है कि वृंदावन में सब बहुत अच्छे से भक्त लोग भजन कर रहे हैं, और कुछ ही दिन पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वो वृंदावन आए और हमने उनका स्वागत किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस दूत के साथ अपनी जो बहिर्वास है, कोपिन बहिर्वास, और चैतन्य महाप्रभु को जो बैठने का जो लकड़ी था, लकड़ी का जो बैठने का बनाया गया था पीढ़ा, वो तीन चीज गोपाल के लिए उपहार के स्वरूप दिया। और उस दूत को कहा, दूत भी निश्चित रूप से कोई भक्त रहेंगे, कि गोपाल को कहना कि वो दीक्षा देना प्रारंभ कर दे तो इस प्रकार का आदेश था दीक्षा देने के लिए। तो उसी दूत ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये तीन चीज दिया। जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कोपिन, उनके चैतन्य महाप्रभु के बहिर्वास और पीढ़ा को देखा, उन्होंने बार बार प्रणाम किया क्योंकि वो श्री चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद था। आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, तस्मात परतरम देवी तदीयानाम समर्चयन। तो भगवान का जो महाप्रसाद रहता है, महाफूल रहता है, महापानी रहता है, महाप्रसाद रहता है, और सब कुछ वस्त्र ये सब बहुत भगवान का जो है भगवान से अभिन्न माना जाता है, तो जो श्रद्धा के साथ उसको ग्रहण करते हैं। तो गोपाल भट्ट ने उसको बहुत आदर पूर्वक बार बार प्रणाम किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। उसके पश्चात श्रील रूप सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने उनको राधा गोविंद देव का उपासना में लगाया, क्योंकि उनका परिवार पुजारी परिवार में है, से आए हैं, तो राधा गोविंद भगवान का पुजारी बने गोपाल भट्ट गोस्वामी, और बहुत आदर सत्कार के साथ वो पूजा करते थे। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी के सपने में आए और उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आप शालिग्राम शिला का पूजन करना चाहिए, इसीलिए आप गंडकी नदी में जाइए और आपको वहां शालिग्राम शिला मिलेंगे। तो वृंदावन यहाँ है और गंडकी नदी जाने के लिए नेपाल जाना पड़ेगा, तो बहुत दूर है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, तो अभी देखिए कैसा ये सपने में उन्होंने देखा, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, आपको कहाँ जाना है, गंडकी नदी जाना है और शालिग्राम शिला का पालन करना है। तो आप सोचिए अगर कोई साधारण व्यक्ति रहेगा मेरे जैसा तो क्या बोलेगा, वो सपना ही तो था ना, क्योंकि गंडकी तक कौन चल के जाएगा, वृंदावन से नेपाल तक। परंतु इनके स्वप्न में भी जो आते थे, इतने शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के आदेश समझ के चाहे कठिन क्यों ना हो उसको उन्होंने पालन किया और चलते चलते वो गंडकी में नदी में गए। गंडकी नदी में जब गए स्नान करते वक्त, जैसे ही वो पहले सूर्य देव को कुछ अर्पण करना चाहते थे, जब उन्होंने जल लिया, जैसे ही जल लिया उसमें एक शालिग्राम शिला आए, तो उन्होंने फिर पानी में छोड़ दिया, फिर से जल लिया, फिर से शालिग्राम शिला उनके हाथ में आ गए, फिर से पानी लिया, फिर से शालिग्राम शिला आ गया हाथ में। तो इनको लगा कि निश्चित रूप से ये भगवान का इच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हो गए, कूर्म चैतन्य के रूप में, कूर्म शालिग्राम शिला के रूप में, और उनको दामोदर शिला भी कहते हैं। तो उनको लिया और अपने कमंडलों में उन्होंने डाल दिया। उसके बाद फिर से जब करने के लिए गए तो और 11 शालिग्राम शिला उनके हाथों में आ गए। तो इस प्रकार का 12 शालिग्राम शिला को वो लेके आए, और उसमें से जो पहला शालिग्राम शिला था वो प्रमुख रूप से दामोदर शिला थे, तो उनको वो उपासना करने के लिए लेके आए। तो जब श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जा रहे थे गंडकी के तरफ, एक गांव का नाम था देवबंध, वहां पे एक बहुत सुंदर भक्त थे, उनका नाम था माधव प्रसाद शर्मा। उनके दो पुत्र थे, एक नाम गोपीनाथ शर्मा और दूसरे का नाम था दामोदर शर्मा। तो ये दोनों भाई ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना गुरु मान के उनकी सेवा में लग गए और उनके साथ साथ चलने लगे। तो उन शालिग्राम शिलाओं को लेके, भगवान का इस रूप को लेके, शिला रूप को लेके गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए और उनका पूजा अर्चना प्रारंभ कर दिया। तो एक व्यापारी थे, व्यापारी ने वो क्या करते थे, जितने गोस्वामी हैं वृंदावन में सबको मुकुट और भगवान के लिए जो अलग अलग उनके गहने कपड़े इस प्रकार सब साधुओं को दे देते हैं। अपने अपने आप जो भगवान है, कृष्ण है राधा है, उनको आप कैसे श्रृंगार करना। तो उसी प्रकार एक व्यापारी ने एक बार मुकुट दिया। तो ये सोच रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, अभी मैं तो शालिग्राम शिला को मैं पूजा करता हूँ जो भगवान के रूप हैं, इनको मैं कैसे वस्त्र पहनाऊंगा, इनको गहने कैसे पहनाऊंगा। तो कभी कभी उनको बहुत इच्छा होता था कि मुझे भी श्रृंगार करना है भगवान का इस रूप को। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी तुम्हें भगवान का, तुम्हारे पास भगवान का एक रूप प्रकट होंगे और तुम्हें ये सब सेवा करने का अवसर मिलेगा। तब तक गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या करते थे, जब भी झूलन का समय आता था तो उनकी शालिग्राम शिला को लेके कपड़े में बांध देते और झूला झुलाते थे प्रेम के साथ। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको सपने में कहा था, आप जितना भगवान के लिए आतुर होंगे उस रूप के लिए, उतने जल्दी भगवान आपसे प्रकट होंगे। तो बहुत आतुरता के साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान कब प्रकट होंगे, क्योंकि ये बहुत एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है कि भगवान को प्राप्त करने का, क्या है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यति कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। लौल्य चाहिए, मतलब थोड़ा व्यग्रता चाहिए कि हाँ मुझे भगवान को चाहिए, मुझे प्राप्त करना है। तो इस प्रकार का भाव था गोपाल भट्ट गोस्वामी का। तो उन्होंने एक बार अपनी शालिग्राम शिला को टारगेट डेट दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान आप ऐसा कुछ करिए कि मुझे आपका सुंदर रूप को पूजा करने का इच्छा है, तो अगर आप मुझे सुंदर त्रिभंग रूप में प्रकट नहीं होंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस प्रकार का। तो उस दिन नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, तो चैतन्य तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जहां पे घूमते थे नरसिंह कथा होता था, तो सब भक्त लोग बोलते थे अरे भगवान नरसिंह देव पत्थर से प्रकट हो गए और प्रहलाद महाराज को उद्धार किया। तो जैसे ही वो सुनते थे कि पत्थर से प्रकट हो गए, इनका इच्छा क्या होता था कि मेरा भगवान भी शालिग्राम शिला से प्रकट होना चाहिए। और इस भाव से वो रात को निद्रा में गए अगला दिन सुबह जब वो यमुना से वापस आए तो उन्होंने एक सुंदर रूप का दर्शन किया। कौन सा रूप? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा। श्री श्री राधा रमण भगवान की। तो वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध भगवान अभी राधा रमण जी है, बहुत प्रसिद्ध है। और जो हम लोग गाते हैं जय जय राधा रमण हरि बोल, हमने बहुत बचपन से सुना है। ये जो राधा रमण जी, यही राधा रमण जी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी के राधा रमण जी हैं। और उस परिवार में आगे हम लोग सुनेंगे कि जो राधा रमण का जो पूजा होता है, अर्चना होता है, उसका जो स्टैंडर्ड है बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। तो राधा रमण के सुंदर रूप में भगवान प्रकट हो गए, इसलिए अगर आप लोग देखे रहेंगे तो केवल उतना ही जो है उनका हाइट है, बहुत छोटे हैं। तो सारे विग्रह वृंदावन से चले गए थे जयपुर, लेकिन इनको छुपाना आसान है क्योंकि पुजारी अपने जेब में भी छुपा सकते हैं। इतने ही है। इस बार मैं गया था अभी 2 महीना पहले, तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ। तो बहुत दूर से भी दर्शन होता है, पास में भी नहीं होता है, तो बड़ा ऐसे देखना पड़ता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के हमारे गौशाला में राधा रमण जी का इतना बड़ा मूर्ति है, तो बड़ा हाई डेफिनेशन से बहुत सुंदर रूप जो है देखने को मिलता है। तो मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी का ये जो मिलित तनु है, मिलित रूप है, ये एक ही श्री राधा रमण जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्तम जो जो रूप है, गोपीनाथ, जो गोपीनाथ जी के मुख कमल, गोविंद देव के जो बक्षस्थल और मदन मोहन के चरण कमल, ये तीनों का जो संयुक्त रूप है वो श्री श्री राधा रमण जी है। तो राधा रमण जी को उन्होंने उपासना प्रारंभ किया, परंतु एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में इच्छा हुआ कि बहुत दिन हो गया मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से मिला नहीं, ऐसा उनका मन में विलाप कर रहे थे वो। तो जैसे ही उन्होंने आँख खोला, राधा रमण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। तो वो देख के वो बहुत प्रसन्न हो गए और उनको यही समझ में आया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं राधा रमण के रूप में प्रकट हुए हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गोपीनाथ शर्मा जो उनके शिष्य है उनको कहा कि आप विवाह कर लो, क्योंकि मेरे जाने के बाद राधा रमण जी का पूजा चलना चाहिए, तो आप विवाह करिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ब्रह्मचारी बनना है, मुझे विवाह नहीं करना है, दूसरा कोई आदेश देंगे चलेगा। तो उन्होंने जो उनका दूसरा भाई थे दामोदर शर्मा जी को कहा कि आप विवाह कर लीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दामोदर शर्मा जी ने विवाह किया और उनकी वंश परंपरा में अभी भी राधा रमण में जो पुजारी हैं उनकी वंश परंपरा के हैं। तो जैसे प्रसिद्ध श्रीवत्स गोस्वामी यहाँ पे आए थे, पुंडरीक गोस्वामी जो बहुत प्रसिद्ध कथाकार हैं, और इस प्रकार के अनेक जो गोस्वामी हैं सब यही दामोदर शर्मा जी के, गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो व्यक्तिगत शिष्य हैं उनके परिवार का सदस्य हैं। तो अभी भी उस परिवार में बहुत विद्वान भक्त हैं, वो लोग बहुत विद्वान भक्त हैं और श्री श्री राधा रमन को बहुत प्रेम के साथ सेवा करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास का रचना किया और बाद में उसको सनातन गोस्वामी उसको संकलन किए। उसी प्रकार कुछ विद्या कुछ कहते हैं कि जो जीव गोस्वामी के षट संदर्भ हैं उनको भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रारंभिक रूप से उन्होंने उनको रचना किया था। और भगवान को उपासना करने के लिए जितने नियमावली हैं उसका संकलन षट क्रिया सार दीपिका करके एक पुस्तक है, उसका गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी रचना किया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य थे, उनका नाम है श्रीनिवास आचार्य। तो बहुत शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगा कि श्रीनिवास आचार्य का पिता का नाम था चैतन्य दास। तो एक भक्त थे, उनका नाम था गंगाधर चक्रवर्ती। वो श्री चैतन्य महाप्रभु के क्लासमेट थे। तो उन्होंने जब देखा चैतन्य महाप्रभु का सन्यास हो रहा था, उनको पता नहीं था, और वो कटवा में चल के जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सन्यास क्रिया चल रहा है और गंगाधर चक्रवर्ती ने नाम सुना, अभी सन्यास नाम क्या हो गया, श्री कृष्ण चैतन्य। जैसे ही श्री कृष्ण चैतन्य का नाम सुना, गंगाधर चक्रवर्ती का मुख से केवल निरंतर श्री कृष्ण चैतन्य 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 चैतन्य, इस प्रकार का वो चैतन्य का ही नाम ले रहे। तो अपने गांव में गए, उनके मुख में कुछ निकल ही नहीं रहा था, केवल चैतन्य 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 निकल रहा था। तो गांव वाले ने बोला इनका नाम अच्छा होगा कि चैतन्य दास ही रख दो। तो उन चैतन्य दास के जो सुपुत्र हैं उनका नाम है श्रीनिवास आचार्य, जो हमारे जो समसार दावान अल्लाह हम लोग गाते हैं सुबह सुबह, वो उनके रचयिता हैं। श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था कि आप मुझे पुरी में आके मेरा भेंट करो। जैसे ही पहुंचे उनको खबर चला कि चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। फिर गदाधर पंडित को मिले, गदाधर पंडित को उन्होंने निवेदन किया मुझे आप भागवत सुनाइए। तो श्री गदाधर पंडित ने कहा हम चैतन्य महाप्रभु के साथ जब भागवत सुनते सुनते सारे जो हमारे भागवत है सब गीला हो गया, आप एक नया कॉपी लेके आओ भागवत का, तभी हम लोग फिर से भागवत चर्चा करेंगे। तो इसके लिए पूरा वापस उनको नवद्वीप आना पड़ा श्रीनिवास आचार्य को। और फिर जब वापस चल के गए उनको पता चला गदाधर पंडित भी इस संसार से चले गए। तो उनको बहुत दुख हुआ, ना चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए ना गदाधर गोस्वामी से मिल पाए। तो उनको सपना आया कि आप वृंदावन जाओ, वहां पे आपको रूप सनातन मिलेंगे। जब वो वृंदावन गए, मथुरा पहुंचे, केशव जी का दर्शन किया और वृंदावन जाने वाले थे, उनको पता चला कि रूप सनातन भी इस दुनिया में नहीं है। तो उनको इतना दुख हुआ कि भगवान और उनके पार्षद को मेरे दर्शन नहीं हो पा रहे, मिलने एक बार भी दर्शन नहीं हो पा रहे। परंतु उनके सपना आया कि आप गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है आप उनका शिष्य बनो और श्रील जीव गोस्वामी के अंदर आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो। तो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, इन तीनों ने श्रील जीव गोस्वामी के से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया। तो इस प्रकार 1586 में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा रमण को स्मरण करते करते इस दुनिया से वो गोलोकवासी हो गए। तो आज इस अवसर में गोपाल भट्ट गोस्वामी को हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उनका भक्ति था और भगवान के प्रति समर्पण था और जिस भाव से उन्होंने भक्ति किया उसका एक कण अगर हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज का जो दूसरा तिथि का जो रामचंद्र कविराज, इनका आज तिरोहा दिन है। तो रामचंद्र कविराज भी एक बहुत बड़े भक्त थे। उनका पिताजी का नाम था चिराजेन सेन एक गांव का नाम है श्रीखंड, वहां पे नरहरि सरकार इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े भक्त रहते थे। तो रामचंद्र कविराज जो है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में क्योंकि अभी समय हो गया है। तो रामचंद्र कविराज का एक बार विवाह हुआ, उस समय वो भक्त नहीं थे, उस समय वो काली माता का उपासना करते थे, क्योंकि रामचंद्र कविराज जी को जो दादाजी थे वो काली माता का उपासना करते थे, शाक्त थे वो लोग। तो जब विवाह होके आ रहे थे, उनका पालखी से उन्होंने श्रीनिवास आचार्य जी को देखा। श्रीनिवास आचार्य कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं। तो श्रीनिवास आचार्य कथा कर रहे थे, भागवत कथा कर रहे थे। तो पालखी में बैठ के, शादी का प्रोसेशन जा रहा है, घर वापस आ रहे हैं, उन्होंने पालखी में देखा श्रीनिवास आचार्य कथा कर रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य को देखते ही उनके मन में कुछ अलग प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति विशेष लग रहे हैं और आकर्षित हो गए। श्रीनिवास आचार्य ने भी पूछा, ये कौन है जो पालखी में बैठे हैं? तो उनके भक्त लोगों ने कहा, ये रामचंद्र कविराज हैं, ये वैद्य हैं, ये श्रीखंड में रहते हैं और ये अभी अभी उनका विवाह हुआ है। तो रामचंद्र कविराज जाते हैं, परंतु वो रात को सो नहीं पाते, उनके मन में श्रीनिवास आचार्य का सुंदर रूप आते रहते हैं। तो सुबह सुबह क्या करते हैं, वो दौड़ के श्रीनिवास आचार्य के पास आते हैं और फिर उनका शरण ग्रहण करते हैं। श्रीनिवास आचार्य उनको जो है भगवान का सड़ संदर्भ है वो पढ़ाते हैं उनको, और भक्ति का जितना ज्ञान देते हैं, और रामचंद्र कविराज एक बहुत अच्छे जो है भक्त बन जाते हैं। तो रामचंद्र कविराज की माला में जब भक्त बन गए तो कंठी माला आ गया और हाथ में माला था। तो माला करते करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके घर में गए तो घर वालों ने बोला, ये क्या हो गया तुम्हें, आप तो शाक्त हैं, अभी विष्णु का नाम क्यों नहीं ले रहे हो आप? अगर आप शिव जी का उपासना कर रहे थे और उनको छोड़ देगे तो शिव जी क्रोधित हो जाएंगे, क्यों किया आपने ऐसा? तो उन्होंने कहा कि जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बनता है तो ब्रह्मा और शिव तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा इस सृष्टि करने से पहले पहले भगवान विष्णु का उपासना करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर निर्माण करते हैं। और शिव जी जब भगवान विष्णु के चरण कमल का जल जो गंगा नदी है उसको धारण किया, उसके बाद वो और भी पवित्र हो गए। जो केवल शिव जी का उपासना करता है, केवल, जैसे रावण, तो उनका पतन हो जाता है, उनका मृत्यु होता है। और जो केवल शिव जी का उपासना करते हैं और भगवान का भक्ति नहीं करते, परंतु जो लोग भगवान विष्णु का भजन करते हैं, शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये मैं और वो शास्त्र के साथ इतना उदाहरण दिए तो सब घर वाले प्रसन्न हो गए। तो ये जो रामचंद्र कविराज हैं, ये उनकी वो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे और नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवासचार्य मित्र थे। परंतु हम एक गाना सुनते हैं, एक गीत सुनते हैं भजन, उसमें रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास, ये हमने ये नाम जो सुना है, रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने मित्र मानते थे रामचंद्र कविराज जी को। तो इस प्रकार का एक बहुत पवित्र तिथि है आज, रामचंद्र कविराज जी का भी तिरुभाव दिवस है। तीसरा जो है, आज हमारे गोवर्धन इको विलेज के जो निवासी हैं उनके लिए बहुत सबसे प्रसन्नता का बात है कि मदन मोहन, राधा मदन मोहन और ललिता देवी का जो आविर्भाव दिन है वो आज ही का दिन हुआ था। पिछले साल इसी तिथि पे जो है भगवान यहाँ पे प्रकट हुए थे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के जो हृदय है वो मदन मोहन भगवान के प्रति जो है आकर्षित हैं, अगर आपको पता रहेगा कि जब महाराज जी 1971 में वृंदावन में आए थे, तो यमुना के तट पे सोते थे। 19 साल का अमेरिकी लड़का यमुना के तट पे सोता था। हम विचार भी नहीं कर सकते क्योंकि हम सो भी नहीं पाएंगे। हम जैसे ही आंख बंद करेंगे सोचेंगे पीछे से सांप आएगा क्या लेकिन वो यमुना के तट पे सोते थे क्योंकि वो भगवान वृंदावन को प्रेम करते थे। और महाराज जी बताते हैं कि वो यमुना के तट पे सो के, उस समय तो बिल्डिंग ज्यादा नहीं थे, तो यमुना के तट पे सो के मदन मोहन मंदिर की तरफ देखते थे। और उसी दृश्य को देखते देखते महाराज जी सोते थे और उसी दृश्य को देखते देखते उठते थे। तो महाराज जी के जो मदन मोहन जी के साथ जो संबंध है उतना पुराना है। तो उसी को महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार नव वृंदावन का निर्माण हेतु यहाँ पे प्रकट किया। और मदन मोहन जी का सुंदर विग्रह को दर्शन के लिए हम लोग देख रहे हैं अभी कितने श्रद्धालु, कितने लोग अभी इस पावन देश में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे गोवर्धन इको विलेज में हम जितने लोग भक्त हैं, हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमें भगवान की उपासना करने के लिए हमें इतना सुयोग मिल रहा है। ये बहुत अपने आप में एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान को सेवा करने का सुयोग हमें प्राप्त हो रहा है। और इससे हमारा शुद्धिकरण बहुत जल्दी होगा। और हमारे गुरुकुल के जो विद्यार्थीगण हैं वो लोग प्रतिदिन भगवान मदन मोहन जी के प्रसन्नता के लिए कीर्तन भी करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो गोवर्धन इको विलेज सारे निवासियों के लिए हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे पास भगवान ने वृंदावन बिहारी जी और मदन मोहन जी इस प्रकार दो रूप में प्रकट होके हमारी चेतना को उठाने के लिए, भगवान की ओर और लेके जाने के लिए वो प्रकट हुए हैं। हाँ, तो उसी कृतज्ञता के साथ हमें उनकी सेवा में लगे रहना है। और ये जो संपदा हमें मिला है, भगवान की संपदा, ये हमें उसको भी गिनती करनी चाहिए। जैसे पद्यावली में कहा गया है, कोई बिजनेसमैन रहता है तो वो गिनते रहता है, आज इतना पैसा आया, बार बार गिनता है, आज कितना कमाई हुआ, उसको संग्रह करता है, उसको चिंतन करता है और उसको गिनता है। उसी प्रकार कहते हैं कि बिचे यानी बिचे यामी विचिन्त्य यानी पुनः पुनः। तो भक्त कहते हैं त्वन नामानि भवन्तु न, आपका नाम भी हमको ऐसे ही चिंतन करना है। तो हमें कुछ कुछ चीजों को बार बार चिंतन करना है कि मुझे कौन कौन सा लक्ष्मी मिला है, भगवान का सेवा मिला है, हरि नाम मिला है, भागवत मिला है, वृंदावन मिला है। तो इस प्रकार के बहुत संपदाएं हैं जो हमें प्राप्त हुआ है, परंतु एक दूसरे को हमें स्मरण करवाना है कि हमें क्या प्राप्त हुआ है और उस कृतज्ञता से हमारा सेवा को जारी रखना है। श्रील प्रभुपाद की, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की, श्रील रामचंद्र कविराज गोस्वामी की, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता देवी की। निताय गौर प्रेमानंदे। गएंगे तो अभी जे आने लो प्रेम धनो भजन हम लोग गाएंगे, तो उसके बाद आरती रहेगा और फिर सबके लिए प्रसाद भी है।